और लूत अलैहिस्सलाम को हमने हुक्म और इल्म बख्शा और उसे उस बस्ती से निकाल दिया जो बदकारियां करती थी। दर हकीकत वो बड़ी ही फासिक कौम थी, और लूत को हमने अपनी रहमत में दाखिल किया। ए अल्लाह, जैसे लूत अलैहिस्सलाम को बचा लिया उन गंदे लोगों से, हमारी नस्लों को भी बचा ले। और क्यों बचाया? क्योंकि वो सालेह थे। अल्लाह हमारी नस्लों को भी सालेहीन में शामिल कर ले। और यही नेमत हमने नूह को दी, याद करो जब के इन सब से पहले इसने हमें पुकारा था। देखिए नूह ने किसको पुकारा? अल्लाह को पुकारा। हमने इसकी दुआ कबूल की और इसे और इसके घर वालों को कर्बे अजीम से निजात दी, और इस कौम के मुकाबले में इसकी मदद की जिसने हमारी आयात को छुटला दिया था। वो बड़े बुरे लोग थे, बस हमने इन सब को गर्क कर दिया। और इसी नेमत से, आप समझ रहे हैं ये नेमत क्या है? सिर्फ अल्लाह को पुकारने की नेमत। ये बहुत बड़ी नेमत है। दुआ कीजिए अल्लाह इस दर को हमेशा अपने आगे झुका ले। ये हाथ उठे तो सिर्फ रब के आगे उठे, ये सर झुके तो सिर्फ रब के आगे झुके। और इसी नेमत से हमने दाऊद और सुलेमान को सरफराज किया। याद करो वो मौका जबकि दोनों एक खेत के मुकदमे में फैसला कर रहे थे, जिसमें रात के वक्त दूसरे लोगों की बकरियां फैल गईं और हम उनकी अदालत खुद देख रहे थे। इस वक्त हमने सही फैसला सुलेमान को सुझा दिया, हालांकि हुक्म और इल्म हमने दोनों ही को अता किया। बेटे को ज्यादा हिकमत दे दी, ज्यादा सही राय उसकी थी बाप की निस्बत, हालांकि दोनों नेक थे। यहां नोट कीजिए, कोई जरूरी नहीं कि छोटी उम्र का शख्स गलत राय दे, कोई जरूरी नहीं कि छोटी उम्र का शख्स उसका मशवरा गलत हो। बाज दफा उम्र में बड़े होने बल्कि तजुर्बे में बड़े होने के बावजूद इंसान का मशवरा गलत हो सकता है। अब दाऊद अलैहिस्सलाम ने माइंड किया, हाय हाय मेरे आगे बोला अकल का बच्चा नहीं। फिर यहां वही बात याद रखें, हमेशा देखिए बात क्या कही जा रही है। ये ना कि ये कल के बच्चे क्या समझेंगे, इनको क्या पता हमारे हाथों में पले हैं। इसी वजह से आप देखिए बाज दफा हम अपने बच्चों की खैर से महरूम हो जाते हैं। तो यहां अपने लिए अमल की बात लिखें, पहले तो अपने बच्चों की सही तरबियत करें, उनका जहनी उफक बुलंद करें, फिर उसके बाद उनसे मशवरे लें। कई जगह आपसे ज्यादा आपकी बेटी का मशवरा अच्छा होगा, और कई जगह बाप से ज्यादा बेटे का मशवरा अच्छा होता है। क्यों? कि बाप कमजोर हो चुका है, कॉम्प्रोमाइजिंग है, माँ भी बेचारी थक गई है। बेटी जो मशवरा देगी वो अच्छा होगी। अल्लाह ताला ने नबियों के जरिए हमें ये सिखा दिया। दाऊद अलैहि सलाम के साथ हमने पहाड़ों और परिंदों को मुसख़र कर दिया जो तस्बीह करते थे, और इस फेल के करने वाले हम ही थे। अल्लाह अकबर, यानी ये नाम है सिर्फ इनका, पीछे तो असल कुदरत अल्लाह की थी। और हमने इसको तुम्हारे फायदे के लिए जिरा बनाने की सनत सिखा दी ताकि तुमको एक दूसरे की मार से बचाए, फिर क्या तुम शुक्र गुजार हो। और सुलेमान के लिए हमने तेज हवा को मुसख़र कर दिया जो इसके हुक्म से सरजमीन की तरफ चलती थी, जिसमें हमने बरकतें रखी। हम हर चीज का इल्म रखने वाले थे, और शयातीन में से हमने ऐसे बहुत सारों को इसका ताबे बना दिया था जो इसके लिए गोते लगाते थे और इसके सिवा दूसरे काम करते थे। इन सब के निगरान हम ही थे। ये मिसालों से क्या सिखाया जा रहा है? 16 नबियों के नाम है इसमें। अभी तक दाऊद और सुलेमान का जो किस्सा पढ़ा है ना, इससे क्या पता चलता है? लिखिए अगले वाक्य के साथ, इसको अपोजिट में देखना है आपने। जरूरी नहीं है कि आप अल्लाह का हुक्म माने, आप दीन पे हो और आपकी दुनिया बिगड़ जाए। इसकी मिसाल है दाऊद और सुलेमान। दुनिया भी दी, आखिरत भी अल्लाह देगा, बल्कि हजरत सुलेमान को तो वो दुनिया मिली जिसका वहां जाके हिसाब भी नहीं होना। अब इसके बरक्स एक और नबी, और यही होशमंदी और हुक्म और इल्म की नेमत हमने अय्यूब को दी। याद करो जब के इसने अपने रब को पुकारा, क्या पुकारा? अन्नी मस्सनिय दुर्रु वअंता अरहमुर राहिमीन। ए मेरे रब, मुझे बीमारी लग गई है और तू अरहमुर राहिमीन है। हमने इसकी दुआ कबूल की और जो तकलीफ इसे थी इसको दूर कर दिया। और सिर्फ इसके अहलो याल ही इसको नहीं दिए, बल्कि इसके साथ इतने ही और भी दिए अपनी खास रहमत के तौर पर, और इसलिए कि ये एक सबक हो इबादत गुजारों के लिए। अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम यहाँ आ गया। हमारे इस हिस्से की, आज के इस दिन की पर्सनैलिटी में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी हैं। जरा सा देखिएगा शीट को, आयत तदब्बुर हम देख चुके, सूरह तौहा में आयत 124 से 126। आज की हदीस सुनिएगा और साथ ही साथ हजरत अय्यूब की इस बीमारी को जहन में रखें, क्योंकि हमारी आज की जो टिप है ना वो क्या है, अपनी बीमारियों का ज्यादा तस्करा ना करें, अपनी बीमारियों, सेहत की खराबी का तस्करा ना करें। मैंने देखा है जितनी दुनिया की नेमतें बढ़ती गई हैं ना, उतनी हमारी बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम कौन थे? अल्लाह ने उनको इतना कुछ दिया, सारी नेमतें थी, शैतान को रश्क आ गया, अल्लाह ने तारीफ फरमाई कि अय्यूब तो बड़ा सब्र वाला है, शुक्र करता है। शैतान ने कहा सब्र शुक्र क्यों नहीं करेगा, सब कुछ तो मिला हुआ है। बस आजमाइश शुरू हो गई, अल्लाह ने सब छीन लिया, घर भी किया, बच्चे भी मर गए, बीमारी भी लग गई। कहते हैं 18 साल तक हजरत अय्यूब बीमार रहे। जरा से इस शख्सियत को रखिए, कीड़े पड़ गए जिस्म में, सब छोड़ के चले गए, सिर्फ एक बीवी थी अल्लाह की बंदी जो साथ लगी रही। और कभी वो कहती कि अल्लाह के नबी हो, मांग लो अल्लाह से सेहत, तो नाराज हुए। जिसने इतने साल से सेहत दी हुई थी, क्या हुआ अगर चंद दिन की बीमारी आ गई? कुछ साल ही तो गुजरे हैं। याद रखिए, ये लोग हमारे लिए रोशनी के मीनारे हैं। बीमारी में इंसान को क्या मिलता है? अगर आज आपको मुझे पता चल जाए तो हम मुबारकबाद देने जाएं उन लोगों को जो बीमार हैं। हदीस सुनिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा बीमार होता है, आप अपने ऊपर लें, कोई बीमारी के दिन याद कीजिए, तो अल्लाह ताला इसकी तरफ दो फरिश्ते भेजता है और फरमाता है कि देखते रहो वो इन लोगों से क्या कहता है जो इसकी बीमार पुरसी को आते हैं। आप सोचिए हमारे कल्चर में क्या कुछ गिले शिकवे हो रहे होते हैं, हाय मर गया, हाय सारे दुख मेरे लिए थे, हाय गर्मी, हाय दर्द, इधर तकलीफ, हाय दवाई खा ली, हाय ये नींद नहीं पड़ती, खाया नहीं जाता। याद रखिए, ये लफ्ज ऊपर फरिश्ते सुन रहे होते हैं। फरमाया, अगर वो इनके सामने अल्लाह अज़्ज़वजल की हमदो सना करता है, तो वो दोनों फरिश्ते इस हमदो सना को ऊपर अल्लाह अज़्ज़वजल की तरफ लेकर चढ़ जाते हैं, हालांकि वो इसे खूब जानता है। तो वो फरमाता है, मेरे बंदे का मुझ पर हक है कि अगर मैं इसको फौत कर दूं, यानी अगर इस बीमारी में ये मर जाए, तो मैं इसको जन्नत में दाखिल करूंगा, और अगर शिफा दूंगा तो इसको पहले गोश्त से अच्छा गोश्त और इसके पहले खून से अच्छा खून दूंगा, और इससे इसकी बुराइयों को दूर कर दूंगा। मौत इमाम मालिक की सही रिवायत है। आप सोचिए, आप इस आयत को देखिए, हजरत अय्यूब के साथ क्या हुआ? बीमार हुए, शुक्र किया, अन्नी मस्सनिय दुर व अंत अरहमुर राहिमीन, यही हमारी आज की दुआ में से भी दुआ है, अन्नी मस्सनिय दुर व अंत अरहमुर राहिमीन, ए मेरे रब, मुझको तकलीफ पहुंच रही है, आप सब मेहरबानों से ज्यादा मेहरबान है। शऊर से पढ़िए, और अपनी जिस्मानी रूहानी बीमारियों को जहन में रखते हुए सब मिलके पढ़िए। हजरत अय्यूब ने ये दुआ पढ़ी, अल्लाह ने उनको सेहत दी, बल्कि उतना ही और दिया, जवान भी कर दिया, बीवी भी दोबारा जवान हो गई, बच्चे भी और मिल गए। इन पे सोने की टिड्डियां बरसी थी और दोनों हाथों से जमा कर रहे थे। कहा सबर सबर अय्यूब, कहा नहीं, ये मेरे रब का इनाम है, इसको दोनों हाथों से समेटूंगा। तो याद रखिए, अल्लाह पहले गोश्त से अच्छा गोश्त और पहले खून से अच्छा खून देता है उन बीमारों को जो सबर करें। तो फिर लिखिए आज की अपने लिए टिप, कि हर दिन ये सोचकर गुजारना है कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, फिर हम इसकी कदर करेंगे, फिर हम इससे फायदा उठाएंगे। और आज के बाद अपना वक्त नहीं जाया करना बीमारियों के किस्से सुना सुना के। कितने लोग इस पे खुद से नियत करते हैं, वो हाथ खड़े करें। माशाल्लाह, मैं आपको खुशखबरी दूं, अगर आप इस बात पे कायम रहे तो आपके करीब से जो लोग छट चुके थे ना, वो वापस आ जाएंगे। याद रखिए, जब लोगों को अपने दुख सुनाते हैं तो लोग हमसे दूर होने लगते हैं। दूसरी दुआ भी हमारी जो आज की है, वो भी इधर ही साथ ही देख लीजिए, अभी आगे आने वाली है, जिसको हम बड़े प्यार से आयत करीमा कहते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता, नहीं कोई माबूद मगर तू, सुभानक, तू पाक है हर नफ्स से, इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, मैं हूं कसूरवार। पढ़िए जरा मिलकर। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी हमारी आज की काबिले तक़लीद पर्सनैलिटी हैं। पीछे भी बात हुई थी इनके किरदार पे कि थोड़ी सी जल्दबाजी की और निकल गए, लेकिन जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا مانگی، اللہ نے وہاں سے نکلنے کا سبب پیدا کر دیا. اللہ ہمیں بھی اس کلمے کو پڑھنے والا بنا دے. تیسری دعا سورۃ انبیاء کی آیت 89 ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے میرے رب، مجھ کو لا وارث مت رکھیو، یعنی مجھ کو فرزند دیجئے کہ میرا وارث ہو، اور سب وارثوں سے بہتر آپ ہی ہیں. پڑھیے. کس کی دعا ہے یہ؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں کی طرح بالکل صاف ستھری دعائیں مانگنے والا بنائے. واپس آئیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی گئی کہ یہ سب صابر لوگ تھے. آپ نوٹ کیجئے، کامن کوالٹی پروفٹس کی صبر. آپ کو مجھے بھی صبر کرنا ہے. اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحوں میں تھے، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا. یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلے گئے، اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں. کب پڑھا، کیسے پڑھا، کتنا پڑھا، یہ نہیں پتا. یہ پتا ہے کہ یونس علیہ السلام نے دل کی گہرائیوں سے پڑھا، شعور کے ساتھ پڑھا. آج مجھے آپ کو بھی ایسے پڑھنا ہے. آج بعض لوگوں نے اس کے ساتھ 125,000 کا لفظ لگایا ہے. لکھ کے دیکھیے، 125,000، 125,000 بار. اور آپ اگر یہاں دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے قرآن پاک میں آیت موجود ہے، 1-2، تقریباً 1.5 لائن ہے. اچھی طویل آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پورے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6,600 پلس جتنی بھی ہیں. 6,000 آیتیں پڑھیں گے نا تو ایک قرآن پورا ہوگا. 125,000 میں کتنے قرآن بنتے ہیں؟ کبھی سوچیں، اتنا بوجھ. تقریباً 20-25 قرآن پڑھنے کے برابر یہ وظیفہ بن جاتا ہے. ایسا نہ کریں، کھلا پڑھیں، خود پڑھیں، بے حساب پڑھیں. اللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح مومنوں کو بھی نجات دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلمے سے محبت دے دے، اور ہم اس کو اپنی مشکلات میں پڑھنے والے بن جائیں. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ہم نے جو پڑھا، اس کو ہماری تکلیفوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. اور زکریا کو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ پروردگار، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو ہی ہے، پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیے، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. یعنی بڑھاپے میں خود بوڑھے اور بیوی بانجھ، کون سا ڈاکٹر ملا ہوگا ان کی بیوی کو؟ اللہ نے خود ہی ٹھیک کر دیا. وجہ نوٹ کریں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کیا کرتے تھے، ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے، اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے. آپ کو اگر اولاد چاہیے، یہ کام کریں. جتنا بھاگ بھاگ کے ڈاکٹرز پہ جانا اور پیسے لگانا اور نہ جانے کیا کچھ کرنا، آپ بھاگ دوڑ شروع کر دیجئے نیکی کے کاموں میں. آپ کے نصیب میں اولاد ہے نا، اللہ آپ کو دیکھے گا بغیر علاج کے دے دے گا. اور اگر اولاد نہیں ہے نا، اللہ آپ کو اتنا مصروف کر دے گا، آپ کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی. اللہ آپ کو اتنی محبت ہے، اتنے سہارے دے دے گا کہ آپ بے نیاز ہو جائیں گے. ہم کام کرتے ہوئے بھی چھوڑ دیتے ہیں، پر مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ اولاد دے گا نا، تو ہماری دوڑ دھوپ چھوٹ جانی ہے. پھر ہم نے کہنا نہیں، اب بچوں کے ساتھ دین کا کام نہیں ہوتا، تو اپنے لیے عمل کی بات لکھیں. بچے ہیں کہ نہیں ہیں، دین کی دوڑ دھوپ نہیں چھوڑنی، ورنہ یہ بچے ہمارے لیے آزمائش بن جائیں گے. اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا، اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا. یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے. اب سورت کا تتم ہے. اللہ تعالیٰ مختلف انبیاء کرام سے آپ کی میری ملاقات کے بعد کہتے ہیں، یہ سب ایک ہی خاندان تھا، اور ان سب کا پیغام کیا تھا؟ پس تم میری عبادت کرو. مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے، پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی. دعا کریں کہ اللہ ہم سے وہ کام لے لے کہ جس کی اللہ قدر کر لے، और इसे हम लिख रहे हैं, और मुमकिन नहीं कि जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया हो वो फिर पलट सके, यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और हर बुलंदी से वो निकल पड़ेंगे और वादे बरहक के पूरा होने का वो करीब आ लगेगा, तो यकायकीन लोगों के दीदे फटे के फटे रह जाएंगे जिन्होंने कुफर किया था। कुर्बे कियामत की अलामतों में से एक अलामत, कहेंगे हाय हमारी कमबख्ती, हम इस चीज की तरफ से गफलत में पड़े हुए थे बल्कि हम खताकार थे, बेशक तुम और तुम्हारे माबूद जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पूछते हो जहन्नुम का ईंधन है, वहीं तुमको जाना है, अगर ये वाकई खुदा होते तो वहां ना जाते, अब सबको हमेशा इसी में रहना है, वहां वो फुंकारे मारेंगे और हाल ये होगा कि इसमें कान पड़ी आवाज सुनाई ना देगी, रहे वो लोग जिनके लिए हमारी तरफ से भलाई का फैसला पहले से हो चुका। सोचिए तो यकीनन वो इससे दूर रखे जाएंगे, अल्लाह हमारे लिए भी ये फैसला करते, इसकी सरसराहट तक न सुनेंगे, अल्लाह हमें जहन्नुम की सरसराहट भी ना सुनाना, और वो हमेशा हमेशा अपनी मन भाती चीजों के दरमियान रहेंगे, अल्लाह हमें भी मन भाती जन्नत में दाखिल करना। वो इंतहाई घबराहट का वक्त इनको जरा परेशान न करेगा, और मलाइका भड़कर इनको हाथों हाथ लेंगे और क्या कहेंगे, ये तुम्हारा वही दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। आप देखिए शादी वाले दिन दुल्हन के बड़े लाड होते हैं, कहते हैं आज तुम्हारा दिन है, नेक शख्स सारी जिंदगी मेहनत करके आया, वहां जाकर फरिश्तों के जरिए से ये खबर सुना दी जाएगी कि वो तुम्हारा दिन था। अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में मेहनत करने वाला बना दे। हदीस में भी आता है कि कब्र में जब बंदे का हिसाब किताब होता है तो उसको कहा जाता है नम का नौमत रोज, ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है, उसको कोई नहीं उठाता, कहते इसको आराम करने दो, तो आज काम कीजिए, कब्र में इंशाल्लाह आराम करेंगे। आगे क्यामत के मंजर, वो दिन जब के आसमान को हम यूं लपेट कर रख देंगे जैसे तू मार में और आंख लपेटे जाते हैं, जिस तरह पहले हमने तखलीक की इब्तिदा की थी इसी तरह हम इसको दोहराएंगे, एक वादा है हमारे जिम्मे और ये काम हमें बहरहाल करना है, और जबूर में हम नसीहत के बाद लिख चुके कि जमीन के वारिस हमारे नेक बंदे होंगे, इसमें एक बड़ी खबर है इबादत गुजार लोगों के लिए, तब देखिए इसमें खुशखबरी है नेक काम करने वालों को कि आखिरी अंजाम उनका ही अच्छा होगा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ए नबी हमने तो आपको दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा, ए अल्लाह हमें अपने इस नबी की रहमतें समेटने वाला बना दे। कुल इन्नमा यूहा इलैया, इनसे कहो मेरे पास जो वही आती है वो ये है कि तुम्हारा खुदा सिर्फ एक खुदा है, फिर क्या तुम सरे इताअत झुकाते हो, अगर वो मुंह फेरे तो कह दो कि मैंने अलल ऐलान तुमको खबरदार कर दिया, अब मैं ये नहीं जानता कि वो चीज जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है यानी कयामत करीब है या दूर, अल्लाह वो बातें भी जानता है जो बावाज़े बुलंद कही जाती हैं और वो भी जो तुम छुपा कर करते हो, मैं तो ये समझता हूं कि शायद ये देर तुम्हारे लिए एक फितना है और तुम्हें एक खास वक्त तक मजे करने का मौका दिया जा रहा है, आखिरकार रसूल ने कह दिया ए मेरे रब हक के साथ फैसला कर दे, और लोगों तुम जो बातें बनाते हो इनके मुकाबले में हमारा रब रहमान ही हमारे लिए मदद का सहारा है, यानी इतना सताए गए रसूल के एक दिन फिर उन्होंने रब का दर खटखटाया कि अल्लाह हमें इन लोगों से निजात दे दे। तो आप देखिए सूरत अंबिया पढ़ी, नबियों का तذکرہ, ना उनके पैदा होने का जिक्र, ना उनके मरने का जिक्र, ना उनकी शादी ब्याह का जिक्र, पूरी सूरत में आपको नबियों की दुआएं मांगने का तरीका सिखाया जा रहा है, इसी तरह आगे हम सूरत शोरा में पढ़ेंगे तो नबियों का मिशन दिखाया जाएगा, ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे आपको नबियों के मिशन पे चला ले। खुशकिस्मत है वो लोग कि जो आज नबियों के रास्तों पे चलकर उसके इस दीन को लेकर चल रहे हैं। अगली सूरत सूरत हज है, और हज क्या है, फाइव पिलर्स ऑफ बोलिए इस्लाम, और कौन कौन से हैं, ईमान, नमाज, रोजा, हज, जकात, इनमें से किसी नाम की कोई सूरत नहीं है। सवाल पैदा होता है कि हज नाम की सूरत क्यों है, कुछ लोग कहेंगे इसमें पूरी हज की फिक्र पढ़ाई जाएगी, क्या करें तो दम देना पड़ता है, क्या करें तो बाल टूट जाए तो क्या करना पड़ता है, हज भी कर आते हैं तो आके सवाल पूछते हैं वो वहां बाल टूट गया था ये हो गया, मुझे किसी ने बड़ा चंद दिन पहले बड़ा ही अजीब सवाल पूछा, मैंने कहा मैंने तो जिंदगी में पहली दफा ये आपका मसला सुना है, बाकी तो मैंने कभी सुना ही नहीं। हम इतने क्यूरियस हो जाते हैं बाल टूटने से, शीशा देख लिया तो दम देना, कंघी तो नहीं की वैसे ही खुजली की तो बाल टूट गया तो दम देना। हाँ किसी ने पूछा स्कार्फ उतारा तो उसके साथ बाल लगा हुआ था तो फिर दम दूंगी ना मैं इसका। यहाँ हज का मकसद है और लिख लें, हज कयामत की याद। आप यहां से हज के लिए जाते हैं कपड़े उतार के, सफेद लट्ठे का कफन, सफेद एहराम, उधर क्या है कफन। इधर घर वालों को छोड़ के जाते हैं उधर भी छोड़ जाएंगे, इधर वाले भी फूल डाल के आपको रुख्सत करते हैं, कुछ लोगों ने आपकी मैयत पे भी फूल ही डाल देने हैं, बाकी चीजें आप आयतों के साथ सुनिए और आप बिल्कुल महसूस करेंगे कि वाकई कयामत आने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन्ना सुत्तफू रब्बकुम, लोगो अपने रब के गजब से बचो, बेशक क्यामत का जलजला बड़ी हौलनाक चीज है। आप जरा से मुतमईन हो, सोचें कभी आपकी जिंदगी में जलजला आया, मुझे याद है कुछ झटके, अल्लाह ताला बचा के रखे, उस वक्त को जहन में लाइए। जिस रोज तुम इसे देखोगे हाल ये होगा कि हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी, हर हामिला का हमल गिर जाएगा और लोग तुमको मदहोश नजर आएंगे, हालांकि वो नशे में ना होंगे बल्कि अल्लाह का अजाब ही कुछ ऐसा सख्त होगा। क्यामत के दिन बोलती जुबानें खामोश हो जाएंगी। आज दुनिया में जलजला आता है तो चंद दिन के लिए मस्जिदों में नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है, तो असल बात यह कि इस क्यामत को याद रखना है। लेकिन लोगों का हाल क्या है, बास लोग ऐसे हैं जो इल्म के बगैर अल्लाह के बारे में बहसें करते हैं और हर शैताने सरकश की पैरवी करने लगते हैं। यहाँ अमल की बात लिखिए, बहस नहीं करनी। आप कहेंगे नहीं नहीं देखें ये इल्म के बगैर बहस हो रही थी, हमारे पास तो बहुत आ गया है, तो लिखिए इल्म के साथ भी बहस नहीं करनी। बहसें करने वाले कभी नहीं जीते और बहस जिनसे की जाती है उन्होंने कभी हिदायत कबूल नहीं की। जहां आपको फील हो ना दूसरा बंदा बहस के मूड में आ गया है, कालू सलामन, सलाम करके गुजर जाए। हालांकि इसके नसीब में तो ये लिखा है कि जो कोई इसको दोस्त बनाएगा वो इसको गुमराह करके छोड़ेगा और अजाबे जहन्नुम का रास्ता दिखाएगा। लोगों अगर तुम्हें जिंदगी बाद मौत के बारे में कुछ शक है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुझे तो शक नहीं है ना, पर जहां आते उतर रही थी वहां था, तो तुम्हें मालूम हो कि हमने तुमको मट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर खून के लोथड़े से, फिर गोश्त की बोटी से जो शक्ल वाली भी होती और बेशकल भी। ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम पर हकीकत वाज़े करें। हम जिस नुतफे को चाहते हैं एक वक्त खास तक रहमों में ठहराए रखते हैं, फिर तुमको एक बच्चे की सूरत में निकाल लाते हैं, फिर तुम्हें परवरिश करते हैं ताकि तुम अपनी जवानी को पहुंचो और तुम में से कोई पहले ही वापस बुला लिया जाता है। कभी किसी की जवानी से पहले डेथ हुई, किसी का बच्चा, टीनेजर, 10 साल, 20 साल, 15 साल, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह पैदा होते को ले जाए, और तुम में से कोई बदतरीन उम्र की तरफ फेर दिया जाता है। पीछे क्या था, अर्जल उम्र। क्यों अल्लाह कुछ लोगों को बहुत लंबी उम्र देता है, ताकि सब कुछ जानने के बाद फिर कुछ ना जाने, एक लफ्ज याद नहीं रहता। एल्जाइमर हो जाए तो खून के रिश्ते भी भूल जाते हैं, बचपन पे चला जाता है इंसान, बीच के सारे मरहले खत्म। मेरे खानदान की एक खातून थी, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, कि जब वो एल्जाइमर का शिकार हो गई आखिरी उम्र में, बूढ़ी थी जारे नानी दादी थी, तो वो किस स्टेज पे चली गई थी, जब वो खुद बच्ची थी तो कोई आता था ना तो उसको आना मांगती थी, पैसे दो, अपने हस्बैंड को मामू कहती थी, बिल्कुल उनका जहन, डॉक्टर ने बताया कि ये इस वक्त वही अपनी जो उनकी बचपन की थी उनका जहन उस पे चला गया। क्या मुश्किल है उसके लिए, आज मत मान कीजिए बड़ी मेमोरी अच्छी है, बहुत अच्छा बोलती हूँ, बहुत बैठ सकती हूँ, बहुत लिख सकती हूँ, एक लफ्ज नहीं पढ़ सकूंगी जब अल्लाह ना चाहेगा। और तुम देखते हो कि जमीन सूखी पड़ी है, फिर जहां हमने इस पर मीं बरसाया कि यकायक वो फबक उठी और फूल गई और इसने हर किस्म की खुश मंजर नबातात उगलनी शुरू कर दी। इसी तरह जवानी आती है फिर ढल जाती है। ये सब कुछ इस वजह से है कि अल्लाह ही हक है और वो मुर्दों को जिंदा करता है और वो हर चीज पर कादिर है, और ये इस बात की दलील है कि क्यामत की घड़ी आ कर रहेगी। जरा तो सोचे क्या होगा, जिस वक्त क्यामत आएगी मेरे साथ होगा क्या, कब्र से किस हाल में निकलूंगी। और अल्लाह ताला कहते हैं इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, और अल्लाह जरूर इन लोगों को उठाएगा जो कब्रों में जा चुके हैं। बस और लोग ऐसे हैं जो किसी इल्म और हिदायत और रोशनी बख्शने वाली किताब के बगैर गर्दन अकड़ाए हुए खुदा के बारे में झगड़ते हैं। अल्लाह हमें अकड़ से बचा, अल्लाह हमें ऐसे लोगों में न शामिल करना ताकि लोगों को अल्लाह की राह से भटका दें। ऐसे शख्स के लिए दुनिया में रुसवाई है और क्यामत के रोज हम उसको आग के अजाब का मजा चखाएंगे। ये है तेरा वो मुस्तकबिल जो तेरे अपने हाथों ने तैयार किया है, वरना अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। और लोगों में कोई ऐसा है, इस पे जरा सी तवज्जो चाहिए, बड़ी खूबसूरत आयत है। और लोगों में कोई ऐसा है जो किनारे पर रहकर अल्लाह की बंदगी करता है, अगर फायदा हुआ तो मुतमईन हो गया, और जो कोई मुसीबत आ गई तो उल्टा फिर गया। क्या होगा इसके साथ? इसकी दुनिया भी गई और आखिरत भी गई, ये है सरी खसारा। ये कौन है? पीछे आपने दावत सुनी थी, उदखुलु फिस्सिल्मि काफा, पूरे आओ, दीन के मिडल में आओ। देखिए आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, माशाल्लाह कुछ बच्चों की माएं मजबूरी की वजह से पीछे बैठती है ना, और कुछ रिसेप्शन पे बैठते हैं। मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि इस क्लास का सबसे ज्यादा फायदा वो लेते हैं जो बिल्कुल मिडल में बैठे हैं। ऐसे ही फर्क पड़ता है आगे बैठने से। ये है दीन के किनारों पर रहने वाले दीन को बोझ समझते हैं। किनारा सख्त होता है हमेशा, और किनारों से कश्तियां डूबती हैं, बीच वाले तो बच ही जाते हैं। असल में ये वो लोग हैं जो सारे तहफ्फुज़ात लेकर दीन में दाखिल होते हैं। अल्लाह कहते हैं इनको छोड़ दो। ये तो ऐसे ही है, मिसाल दे रही हूं सिर्फ, कि कोई इस रूम के डोर पे खड़ा हो जाए, भाई अंदर आइए सिस्टर, नहीं, इधर ही ठीक हूं, क्यों, जरा देखती हूँ अंदर क्या हो रहा है, दिल चाहा तो आ जाऊंगी, कोई अच्छी चीज हो रही है इधर, कोई मजे का बात है तो चलते हैं, और अगर बुरी हुई तो निकल जाऊंगी। जो लोग दीन से कन्नी कुतरा जाते हैं और मुश्किल में दीन को छोड़कर निकल जाते हैं, ये उन लोगों की बात है। अल्लाह ताला मुझे आपको ऐसे लोगों में ना करे। फिर वो अल्लाह को छोड़कर इनको पुकारता है जो ना इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं ना फायदा, ये है गुमराही की इंतहा। वो इनको पुकारता है जिनका नुकसान इनके नफे से करीब तर है। बदतरीन है इसका मौला और बदतरीन है इसका रफीक, इसके बरक्स। पहले तो दुआ करें अल्लाह हमें इनमें शामिल कर ले। अल्लाह इन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, यकीनन ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। अल्लाह करता है जो कुछ चाहता है। जो शख्स ये गुमान रखता हो कि अल्लाह दुनिया और आखिरत में इसकी कोई मदद ना करेगा, इसे चाहिए कि एक रस्सी के जरिए आसमान तक पहुंचकर शगाफ लगाए, फिर देख ले कि आया इसकी तदबीर किसी ऐसी चीज को रद्द कर सकती है जो इसको नागवार है। ऐसी ही खुली खुली बातों के साथ हमने इस कुरान को नासिल किया है, और अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। अल्लाह हमें भी हिदायत दे दे। जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी हुए और जो साबी और नसार और मजूस और जिन लोगों ने शिर्क किया, इन सब के दरमियान अल्लाह क़यामत के रोज़ फैसला करेगा। देखिए कितनी आयतें अभी गुजरी हैं, 17, शायद तीसरी या चौथी बार क़यामत का जिक्र आ रहा है। तो हज हमें क़यामत की याद दिलाता है। इसके बाद जब भी अल्लाह आपको मुझे हज उमरे का मौका दे, आपने इन आयतों को याद रखना है। हर चीज अल्लाह की नजर में है, क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह के आगे सर बसजूद हैं वो सब जो आसमानों में हैं और जो जमीन में हैं, सूरज और चांद और तारे और पहाड़ और दरख्त और जानवर और बहुत से इंसान और बहुत से वो लोग भी जो अजाब के मुस्तहिक हो चुके, और जिसे अल्लाह जलील व ख्वार कर दे, इसे फिर कोई इज्जत देने वाला नहीं। अल्लाह करता है जो कुछ चाहता है। दिल की गहराई से दुआ करें कि अल्लाह हमें दुनिया आखिरत की रुसवाई से बचा। ये दो फरीक है जिनके दरमियान अपने रब के मामले में झगड़ा है, इनमें से वो लोग जिन्होंने कुफर किया। इन आयतों को अपने तर्जमे के साथ गौर से समझना है। इनके लिए आग के लिबास काटे जा चुके हैं, इनके सरों पर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा जिससे इनकी खाले ही नहीं पेट के अंदर के हिस्से तक गल जाएंगे, औसुबिल्ला। और इनकी खबर लेने के लिए लोहे के गुर्स होंगे। जब कभी वो घबरा कर जहन्नुम से निकलने की कोशिश करेंगे, फिर इसी में धकेल दिए जाएंगे कि चखो अब जलने की सजा का मजा चखो। इंसान ही होंगे ना, सोचिए जरा, जिनके साथ ये होगा वो कोई भी होंगे तो इंसान। क्या मैं और आप इंसानियत को इस दुख से बचाने की कोशिश नहीं करेंगे? دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے، ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے۔ وخدو الی الطیب من القول وخدو الی صراط الحمید، ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں تعریفوں والے خدا کا راستہ دکھایا گیا۔ یہ پاکیزہ بات کون سی ہے؟ کلمہ طیب، پہلا کلمہ پاک، کیا کہتے تھے؟ پہلا کلمہ طیب، طیب میں نے پاک، لا الہ الا اللہ۔ دعا کریں اللہ دنیا میں سب تک یہ کلمہ پہنچا دے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت کے راستے میں رکاوٹ ہیں، جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے۔ اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا، اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اے اللہ ہم سب کو اس رسوائی سے بچا لے۔ آج اتنا ہی کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و توب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و توب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔